आगे सबक देखिए भाई, वलौ قال يبن لا يعتق لأن الأمر كما أخبر فإنه ابن أبيه وكذا إذا قال يا بني أو يا بنية لأنه تصغير للابن والبنت من غير إضافة والأمر كما أخبر وإن قال لغلام لا يولد مثله لمثله هذا ابني عتق عند أبي حنيفة رحمه الله وقال لا يعتق وهو قول الشافعي رحمهم الله تعالى. भाई गुज़श्ता सबक में आपने मसला पढ़ा था कि अगर आका अपने गुलाम के बारे में कहे हाजा बनी, ये मेरा बेटा है, और फिर आका इसी बात पर जमा रहा, यानी आका ने ये नहीं कहा कि ये तो मैंने बतौर इज्जत के कहा था या ये मैंने गलती से कह दिया था, बल्कि उसी बात पर आका जमा रहा कि ये मेरा बेटा ही है, तो इस सूरत में यह गुलाम आजाद हो जाएगा। साहिबे हिदाया ने आपको बतलाया कि यह मसला उस सूरत में है कि जब इस जैसे आका का इस जैसा गुलाम बेटा मुमकिन हो सके, यानी आका और गुलाम की उम्र में इतना फर्क है कि जितना बाप और बेटे की उम्र में फर्क होता है, कि आका बाप हो सके तो ये गुलाम उसका बेटा हो सके। मसलन अगर आका 50 साल उम्र का है तो ये गुलाम 20-25 साल उम्र का हो, तो इस उम्र के आदमी का इतनी उम्र का बेटा तो हो सकता है। तो इस सूरत के अंदर आका ने हादबनी कहा और इस पर जमा रहा तो ये गुलाम आजाद हो जाएगा। अलबत्ता नसब साबित होगा या नहीं तो उसमें तफसील बयान फरमाई थी साहिबे हिदाया ने कि अगर इस गुलाम का नसब मारूफ नहीं है, लोगों को इसके नसब का पता नहीं कि ये किसकी औलाद है, तो इस सूरत के अंदर फिर इसका नसब भी साबित हो जाएगा और ये इस शख्स के हकीकी बेटे की तरह हो जाएगा और इसका वारिस भी बनेगा, आजाद भी हो जाएगा और हकीकी बेटे की तरह हो जाएगा, वारिस भी बनेगा। और अगर ये गुलाम ऐसा है कि इसका नसब जो है वो मारूफ है, मसलन आका ने अपनी बांदी का निकाह करवाया था किसी आदमी से और उससे ये औलाद पैदा हुई, और आप जानते हैं कि बांदी की जो औलाद होती है वो भी आका के ममलूक होते हैं, तो अब ये गुलाम जो इस बांदी से पैदा हुआ निकाह की वजह से ये इस आका का ममलूक है और इसका नसब भी मालूम है कि इस बांदी का तो फला आदमी से निकाह हुआ था, ये उस आदमी की औलाद है। तो इस किस्म के गुलाम को आका ने हाजबनी कहा और आका और गुलाम की उम्र में भी इतना फर्क है कि इस जैसा गुलाम इस जैसे आदमी का बेटा हो सकता है, तो गुलाम का नसब तो साबित नहीं होगा क्योंकि उसका नसब तो पहले से ही मालूम है। तो फिर इस सूरत में कलाम का मजाजी माना मुराद होगा और गुलाम आजाद हो जाएगा। आका ने क्या कहा है, हाजबनी, और इसका हकीकी माना क्या कि ये मेरा बेटा है, और इसका मजाजी माना क्या कि ये आजाद है। तो जब गुलाम का नसब मालूम है तो फिर हकीकी माना तो नहीं हो सकता, ये आका का बेटा तो नहीं हो सकता, तो फिर मजाजी माना ही मुतय्यन हो जाएगा और वो साबित हो जाएगा, यानी ये गुलाम आजाद हो जाएगा भाई। और फिर उसके बाद साहिबे हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि एक शख्स ने अपने गुलाम से कहा हाजा मौलाया, ये मेरा मौला है। साहिबे हिदाया ने बतलाया कि इस सूरत में भी यह गुलाम आजाद हो जाएगा। वजह यह कि यह मौला के कई मानी आते हैं अरबी जुबान में। मौला का माना मददगार भी है, मौला का माना चचा का बेटा भी है, मौला का माना वो शख्स भी है जिसने अक्दे मुआलात किया है, इसी तरह मौला का माना मुअतिक भी है यानी मौलाए आला, और निज इसी तरह मौला का माना मुअतक यानी जिसको आजाद किया गया है, यह भी इसका माना है यानी मौलाए असफल। तो मौला के कई मानी साहिबे हिदाया ने जिक्र फरमाए, मददगार भी, चचा का बेटा भी, मौलाए मुआलात भी, मौलाए आला भी और मौलाए असफल भी। और फिर साहिबे हिदाया ने आपको बतलाया कि यहां पर यह जो आका ने अपने गुलाम से कहा है हाजा मौलाया, इस जुमले के अंदर ये जो मौला का लफ्ज आया यहां और कोई भी माना मुनासिब नहीं बनता, यहां मौला का माना मुअतक के करना पड़ेंगे, यानी मौला असफल मुराद लेना पड़ेगा, बाकी मानी यहां मुनासिब नहीं बनते। तो जब यहां पर इस मौला के लफ्ज का माना मुअतक ही करना पड़ेगा तो यूं समझो गोया आका ने एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया जिसका माना मौतक ही है और कोई माना है ही नहीं। जब वो माना यहां मुनासिब नहीं बनते तो यूं समझो वो इस लफ्ज के माना है ही नहीं यहां पर। तो ये आका ने ऐसा लफ्ज जिक्र कर दिया जो मौतक के साथ खास है, यानी वो गुलाम जिसको आजाद किया गया हो। आका गोया यूं कह रहा है हाजा मौलाया, ये मेरा आजाद शुदा गुलाम है, तो इस सूरत में ये गुलाम आजाद हो जाएगा। और बाकी मानी यहां मुनासिब क्यों नहीं, तो उसकी वजह साहिब हिदायत ने बतलाई थी कि यहां पर मौला का माना मददगार के नहीं कर सकते, क्योंकि आका उमूमन और आदतन अपने गुलाम से मदद तलब नहीं करता। गुलाम खिदमत वगैरह छोटे मोटे काम तो करता है, लेकिन बड़े कामों के अंदर गुलाम अपने आका का मददगार बन जाए ऐसा आदतन नहीं होता। बड़े कामों के अंदर उमूमन आदमी अपने अजीजों अकारीब और औलाद वगैरह से मदद तलब करता है, अपने गुलाम से मदद तलब नहीं करता। लिहाजा यहां मौला का माना मददगार के नहीं कर सकते, और नीज यहां मौला का माना चचा के बेटे के भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस गुलाम का नसब मारूफ है, सबको पता है ये फुलां की औलाद है, ये इस आका का चचा का बेटा नहीं है। और नीज यहां पर मौला का माना मौला मुवालात के भी नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि वो इसका मजाजी माना है। मौला मुवालात वो इस मौला का मजाजी माना है, इसलिए क्योंकि वो मुआलात फी दीन है, दीन के अंदर अक़्द मुआलात किया गया है, और ये मौला का लफ्ज इसका मादा वो लाम या है, यानी ये वलियुन से मुश्तक है भाई, और वलियुन का माना है करीब होना, और हकीकत के एतबार से कोई शख्स दूसरे के करीब तब होता है जब नसब में उसके करीब हो या वतन के एतबार से उसके करीब हो, लेकिन इस गुलाम को तो दूसरी जगह से गुलाम बनाकर लाया गया है। मसलन कहीं मुसलमानों की जंग हुई थी दारुल हर्ब वालों से और मुसलमान इसको भी कैदी बनाकर गुलाम बनाकर ले आए भाई, तो इस आका का वतन और है और गुलाम का वतन और, तो नसब के एतबार से भी गुलाम इसका करीबी नहीं और वतन के एतबार से भी गुलाम इसका करीबी नहीं, तो अब इसको दीन के अंदर करीबी होने पर महमूल किया जाएगा कि इससे क्या मुराद है कि ये दीन के अंदर इसके करीब है और ये तो इसका मजाजी माना है। तो यहां ना नसब के एतबार से कुर्ब है और ना वतन और इलाके के एतबार से कुर्ब है, तो लिहाजा मालूम हुआ यहां दीन के अंदर कुर्ब मुराद है। दीन के अंदर कुर्ब मुराद है कि दोनों का दीन एक है और ये तो इसका मजाजी माना है भाई। तो दीन के अंदर जो कुर्ब है ये मजाजी माना है, इसलिए क्योंकि हकीकी कुर्ब तो ये है कि इंसान किसी दूसरे के करीब हो नसब में, या कोई इंसान दूसरे इंसान के करीब हो वतन और जगह के एतबार से, तो ये है हकीकी कुर्ब। लेकिन यहां तो न जगह के एतबार से कुर्ब है और ना नसब के एतबार से कुर्ब है, तो यहां पर फिर इसको दीन के एतबार से करीबी मानना पड़ेगा। तो दीन के एतबार से करीब है, मालूम हुआ हकीकी कुर्ब मुराद नहीं है, मानवी कुर्ब मुराद है। जब मानवी कुर्ब मुराद है ये तो मजाजी माना हुआ भाई। हकीकी माना तो क्या है कि हकीकत में कुर्ब हो, लेकिन यहां हकीकत में कुर्ब नहीं है बल्कि मानवी एतबार से यानी दीन के एतबार से कुर्ब है, तो यह मजाजी माना हुआ भाई। और यहां पर हालांकि कलाम तो मौला के हकीकी माना के बारे में हो रहा है, तो लिहाजा ये मौला का मजाजी माना लेना भी यहां दुरुस्त नहीं। मजाजी माना उस वक्त किया जाता है जब हकीकी माना पर अमल ना हो सके, और यहां तो हकीकी माना पर अमल हो सकता है। हमने बतला दिया कि यहां मौला का माना मौतक के ही होगा, और नीज साहिब हिदायत ने यह भी बतलाया कि यहां मौला का माना मुअतिक यानी वो जो आजाद करने वाला है, यह माना भी मौला का नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि इस कलाम की निस्बत गुलाम की तरफ हो रही है। आका अपने गुलाम को कह रहा है हाजा मौलाया, तो जब यहां मौला का और कोई माना मुनासिब नहीं तो इसका माना मौतक यहां मुतायन हो गया और यह सरीह के दर्जे में हो गया। और जब यह सरीह के दर्जे में हो गया तो आजादी के अंदर सरीह लफ्ज जब आका अपने गुलाम के लिए इस्तेमाल करे तो उसमें गुलाम फौरन आजाद हो जाता है। और फिर साहिब हिदाय ने दूसरे लफ्ज के बारे में भी बतलाया, मसलन आका ने अपने गुलाम को निदा दी या मौलाया, ए मेरे मौला, तो इस सूरत में भी गुलाम आजाद हो जाएगा। वजह यह कि अभी हमने आपको बतला दिया कि यह मौला का लफ्ज मुअतक के अंदर यहां पर सरीह के दर्जे में है। जब आका अपने गुलाम से कहे तो यह मौला का लफ्ज मुअतक के अंदर सरीह के दर्जे में है, और जब आका अपने गुलाम को ऐसे लफ्ज के साथ निदा दे जो आजादी में सरीह हो तो इस सूरत में गुलाम आजाद हो जाता है। लिहाजा या मौलाया कहने से भी गुलाम आजाद हो जाएगा, जैसे या हुर्रु और या आतीकु जैसे ये कहने से गुलाम आजाद हो जाता है, इसी तरह या मौलाया कहने से भी गुलाम आजाद हो जाएगा। और उसके बाद साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि अगर कोई शख्स अपने गुलाम को निदा देता है और कहता है या बनी, ऐ मेरे बेटे, या आखी, ऐ मेरे भाई, तो इस सूरत में गुलाम आजाद नहीं होगा। वजह यह कि ये जो निदा दी जाती है किसी को, ये उसको इत्तला देने के लिए होती है कि मैं तुम्हें तलब कर रहा हूं। और जब निदा वसफ के साथ दी जाएगी तो वहां दरअसल मकसूद यह होता है कि निदा देने वाला चाहता है कि वो जो मुनादा है वो इस वसफ के साथ उसके सामने हाजिर हो जाए। अगर निदा ऐसे वसफ के साथ दी जाए कि आका उसको साबित करने पर कादिर भी है, मसलन आका का गुलाम है और आका उसको निदा दे रहा है या हुर्रो, ए आजाद, भाई ये तो गुलाम है, ये तो आजाद नहीं है, और आप उसको निदा क्या दे रहे हैं या हुर्रो, तो ऐसा वसफ आका जिक्र कर रहा है जो उस गुलाम में मौजूद नहीं, लेकिन ये वसफ आका के इख्तियार में है, आका ये वसफ उसके अंदर साबित कर सकता है। तो जब गुलाम के अंदर एक वसफ नहीं है और आका उस वसफ के साथ इसको निदा दे रहा है तो मतलब यह है आका उस गुलाम को यह खबर दे रहा है कि यह वसफ मैंने तुम्हारे अंदर साबित कर दिया है, अब इस वसफ के साथ मेरे सामने हाजिर हो जाओ। तो मालूम हुआ जब भी निदा वसफ के साथ दी जाएगी तो वहां दरअसल मकसूद यह होता है कि निदा देने वाला चाहता है कि वो जो मुनादा है वो इस वसफ के साथ उसके सामने हाजिर हो जाए। तो जब आका ने भी या हुर्रु कहा है, वो चाहता है कि गुलाम जो है वो इस वसफ हुर्रियत के साथ उसके सामने हाजिर हो जाए, लिहाजा गुलाम आजाद हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बजाय आका ऐसा वसफ जिक्र करता है कि आका उसके साबित करने पर कादिर नहीं है, मसलन आका ने अपने गुलाम से कहा या बनी, ऐ मेरे बेटे, अब आका के निदा देने से तो कोई गुलाम उसका बेटा नहीं बन सकता भाई, या आका उसको निदा देता है या आखी, ऐ मेरे भाई, तो आका के निदा देने से ये गुलाम कोई आका का भाई नहीं बन जाएगा भाई। तो यहां आका ऐसा वसफ जिक्र कर रहा है कि आका उस निदा के जरिए उस वसफ को उस आदमी में साबित नहीं कर सकता, तो इस सूरत में इसको सिर्फ एलाम ही करार दिया जाएगा। निदा किस चीज का नाम था कि मुनादा को एलाम किया जा रहा है, उसको खबर दी जा रही है कि इस वसफ के साथ हाजिर हो जाओ, वसफ के साथ हाजिर हो जाओ। तो यहां पर या बनी और या आखी ऐसा वसफ है कि यह वसफ आका साबित नहीं कर सकता, तो लिहाजा इसको यह नहीं करार दिया जाएगा कि आका उसके अंदर यह वसफ साबित करना चाहता है, क्योंकि आका तो यह वसफ साबित कर ही नहीं सकता। तो यहां सिर्फ इसको एलाम करार दिया जाएगा कि आका उसको इत्तला दे रहा है कि मैं तुम्हें तलब कर रहा हूं, तो इसको यह नहीं करार दिया जाएगा कि आका यह वसफ उसमें साबित करना चाहता है, क्योंकि आका तो यह वसफ साबित कर ही नहीं सकता उसके अंदर। भाई बात समझ में आ गई। तो मालूम हुआ या हुर्रु या आतीकु यह कहने से तो गुलाम आजाद हो जाएगा क्योंकि आका यह वसफ उसमें साबित कर सकता है, लेकिन या बनी और या अखी कहने से गुलाम आजाद नहीं होगा क्योंकि आका यह बेटा होने या भाई होने वाला वसफ अपनी निदा के जरिए अपने गुलाम में साबित नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। वलौ काला यबनु ला यातिकु लिअन्नल अम्र कमा अखबर फ इन्नहु इब्नु अबी, भाई सूरत मसला ये, आका ने अपने गुलाम को निदा दी। पिछले मसले में था कि आका ने निदा दी है या बनी, ऐ मेरे बेटे, इबन की इजाफत हो रही थी याए मुतकल्लिम की तरफ, इबनी मेरे बेटे, या बनी ऐ मेरे बेटे। अब सूरत यह है कि आका अपने गुलाम को निदा देता है लेकिन सिर्फ इबन का लफ्ज इस्तेमाल करता है बगैर इजाफत के, या बनो ऐ बेटे। तो याद रखो इस सूरत में गुलाम आजाद नहीं होगा भाई। तो कहते हैं वलौ काला या बनू ला या आतिकू, और अगर आका ने अपने गुलाम से कहा या बनू ए बेटे ला या आतिकू, तो गुलाम आजाद नहीं होगा। लिअन्न अल अमरा कमा अखबारा, इसलिए क्योंकि मामला ऐसा ही है जैसे आका ने खबर दी है। आका ने गुलाम को क्या कहा है, इबन कहा है, और गुलाम भी तो किसी ना किसी का इबन है भाई। तो गुलाम अपने बाप का इबन है, अपने बाप का बेटा है। तो आका ने यबनु कहकर इस गुलाम के बेटा होने की सिफत की खबर दी है, ये नहीं कहा मेरा बेटा है, सिर्फ ये खबर दी है कि ये बेटा है और ये गुलाम भी अपने बाप का बेटा है। तो ये माना है कि ला यातिकु, ये गुलाम आजाद नहीं होगा। लिअन्नल अमरा कमा अखबारा, इसलिए क्योंकि मामला ऐसा ही है जैसे आका ने खबर दी है। फइन्नहु बनु अबीह, इसलिए क्योंकि ये गुलाम अपने बाप का बेटा है। वकदा इदा काला या बुनयु औ या बुनयतु, और इसी तरह है जब आका ने कहा या बुनयु, या आका ने कहा या बुनयतु। बुनयुन, याद रखो बुनयुन ये तस्गीर है इबन की, इबन की, और बुनयतुन ये तस्गीर है इबनतुन की। इबनतुन का माना है बेटी। ये जो इबनुन का लफ्ज है इसका मादा बा नून वव है, और फिर आखिर से वव को हजफ कर लिया गया और शुरू में हमजा वसल मिला दिया गया तो इबनुन हुआ। तो इबनुन का मादा क्या, बा नून वव, और फिर इसकी तस्गीर जरा बनाएं, और तस्गीर आप जानते हैं कि तस्गीर अमूमन फुआल वजन पर ले जाते हैं, तो यहां इस इबनुन को फुआल वजन पर ले गए। हमजा को खत्म करें और फुआलुन बा नून वो, यह मादा है, इसको तरतीब दें। फुआलुन बुनैवन, बुनैवन ये तस्गीर है इबन की, लेकिन फिर इसके अंदर या और वो जमा हो गए, और आपने पढ़ा है कि इसम के आखिर में या और वो जमा हो जाए और इनमें से पहला हर्फ साकिन हो तो वो को भी या करके या में इदगाम करते हैं। तो बुनैवन के अंदर भी या और वो जमा हो गए और पहला हर्फ यानी या जो है वो साकिन है, तो वो को भी या करके या में इदगाम कर दिया गया तो बुनैयुन हुआ। बुनैयुन ये है इबनुन की तस्गीर भाई। अब इसको आप निदा देना चाहते हैं तो मुनादा मुफरद मारिफा जो है वह मबनी अल जम होता है, तो कहेंगे या बुनैयु, और ये तस्गीर जो है अमूमन शफकत के लिए इस्तेमाल होती है, तो या बुनैयु का माना करेंगे ऐ प्यारे बेटे, यानी बतौर शफकत के तस्गीर इस्तेमाल की जा रही है। तो या बुनैयु यह मबनी अलज़म है, और माना इसका क्या करेंगे, ऐ प्यारे बेटे। इसी तरह या बुनैयतु इसका माना करेंगे ऐ प्यारी बेटी। आका ने अपने गुलाम को निदा दी या बुनैयु, ऐ प्यारे बेटे, या आका ने अपनी बांदी को आवाज दी या बुनैयतु, ऐ प्यारी बेटी। तो इस सूरत में भी ये गुलाम और बांदी आजाद नहीं होंगे, इसलिए क्योंकि मामला ऐसा ही है जैसे आका ने जिक्र किया। आका ने यह नहीं कहा मेरे प्यारे बेटे या मेरी प्यारी बेटी, बल्कि सिर्फ क्या कहा, प्यारे बेटे और प्यारी बेटी, और ये गुलाम और बांदी भी अपने बाप के बेटे और बेटी हैं भाई। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वकदा इदा काला या बुनैयु, तो ये या बुनैयु इसको मबनी अल जम पढ़ना है आपने भाई, क्योंकि मुनादा मुफरद मारिफा हो तो मबनी अल जम होता है भाई। कुरान में अलबत्ता है या बुनैया, याद रखना वहां पर या मुतकल्लिम की भी साथ जोड़ी गई है, यही बुनैयुन ये तस्गीर है इबनुन की, बुनैयुन इसी के साथ या मुतकल्लिम जोड़ देंगे तो तीन या जमा हो गई, और तीन या का जमा होना तो सकील है, लिहाजा एक या को गिरा दिया गया और उस या की जगह फिर या मुतकल्लिम को साथ जोड़ दिया गया। तो ये मुजाफ और मुजाफिले हो गए। और याए मुतकल्लिम जो है उसको साकिन भी पढ़ते हैं और उस पर फतहा भी पढ़ते हैं, तो लिहाजा वहां या बुनैया उसका तर्जमा करेंगे ए मेरे प्यारे बेटे, या बुनैया ए मेरे प्यारे बेटे, लेकिन यहां पर या मुतकल्लिम की मौजूद नहीं, तो इसको मबनी अलज़म पढ़ेंगे। तो कहते हैं वकदा इदा काला, और इसी तरह है जब आका ने कहा या बुनैयु ए प्यारे बेटे, औ या बुनैयतु ए प्यारी बेटी, लिअन्नहु तस्गीरुन लिलिबनी वल बिन्ती मिन गैरी इजाफतिन, इसलिए क्योंकि ये इबन और बिन्त की तस्गीर है, मिन गैरी इजाफतिन बगैर इजाफत के, इसके अंदर याए मुतकल्लिम की तरफ इजाफत नहीं है। वल अमरु कमा अखबारा, और मामला ऐसा ही है जैसे आका ने खबर दी है। उसने भी इनको क्या कहा है, बेटा और बेटी कहा है, और ये भी अपने बाप के बेटा और बेटी हैं भाई। तो कहते हैं वल अमरु कमा अखबारा, और मामला ऐसा ही है जैसे आका ने खबर दी है। व इन काल अली गुलाम ला यूलदु मिस्लुहु लिमिस्लिहि हादा बनी अतक इंद अबी हनीफत रहिमहुल्लाह व काला ला यातिकु व हुवा कौलु शाफिई रहिमहुमुल्लाह तआला। सूरत ये आका ने अपने गुलाम के बारे में कहा हादा बनी, ये मेरा बेटा है, लेकिन ये वो सूरत है कि जब इस जैसा गुलाम इस जैसे आका का बेटा नहीं हो सकता, यानी दोनों की उम्र में इतना फर्क नहीं है। मसलन गुलाम आका से सिर्फ 5-10 साल छोटा है भाई, हालांकि बाप और बेटी की उम्र में तो कम से कम 15-20 साल का फर्क जरूरी है भाई। तो मालूम हुआ इस जैसा गुलाम इस जैसे आका का बेटा नहीं हो सकता, या गुलाम की उम्र भी आका के बराबर है या गुलाम की उम्र आका से ज्यादा है। तो ये तमाम सूरतें इसके अंदर आ गई, यानी वो सूरत जिसमें गुलाम की उम्र इतनी है कि वो इस जैसे आका का बेटा नहीं हो सकता, चाहे गुलाम उम्र में कम तो है लेकिन बहुत थोड़ा फर्क है, या उसके बराबर है या उस आका से भी उम्र में ज्यादा है, तो इस जैसा गुलाम तो इस जैसे आका का बेटा नहीं हो सकता। अब इस गुलाम को आका कहता है हाजबनी, ये मेरा बेटा है। तो याद रखो इमाम साहिब फरमाते हैं इस सूरत में यह गुलाम आजाद हो जाएगा, जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि गुलाम आजाद नहीं होगा, और यही कौल है इमाम शाफई रहमहुल्ला का भी। बात समझ में आ गई। तो पीछे जो मसला जिक्र हुआ था वहां भी आका ने अपने गुलाम से कहा था हाजबनी, लेकिन वो ऐसा गुलाम था कि इस जैसा गुलाम इस जैसे आका का बेटा हो सकता है, और जबकि यहां पर ऐसा गुलाम है कि इस जैसा गुलाम इस जैसे आका का बेटा नहीं हो सकता, तो इस सूरत में भी इमाम साहब फरमाते हैं यह गुलाम आजाद हो जाएगा, इसलिए क्योंकि हाजबनी इसका हकीकी माना यह है, यह मेरा बेटा है, लेकिन यह गुलाम तो इस जैसे आका का बेटा नहीं हो सकता, तो फिर इसका मजाजी माना करना पड़ेगा, और हाजबनी का मजाजी माना है यह आजाद है, तो यह गुलाम आजाद हो जाएगा। तो कहते हैं व इन काल अली गुलाम ला यूलद मिसलुहु लिमिसलिहि हाजबनी, और अगर आका ने हाजबनी ऐसे गुलाम से कहा कि इस जैसे गुलाम को इस जैसे आका के लिए जन्म नहीं दिया जा सकता, तो इसको आका ने क्या कहा हाजबनी अतका इंदा अबी हनीफत रहमहुल्लाह, तो इमाम साहब के नजदीक ये गुलाम आजाद हो जाएगा। बात समझ में आ गई, यहां चाहे आका नियत करे या ना करे हर हाल में गुलाम आजाद हो जाएगा, हर हाल में गुलाम आजाद हो जाएगा, इसलिए क्योंकि यहां हकीकी माना मुमकिन ही नहीं है, तो मजाजी माना ही करना पड़ेगा, और मजाजी माना तो क्या है, यह आजाद है तो गुलाम आजाद हो जाएगा। तो कहते हैं अतका इंदा अबी हनीफत रहमहुल्लाह, इमाम साहब के नजदीक ये गुलाम आजाद हो जाएगा। वकाला, और साहिबैन फरमाते हैं ला यातिकु के गुलाम आजाद नहीं होगा। वह हुआ कौलु शाफिई रहिमहुल्लाह, और यही कौल है इमाम शाफिई रहिमहुल्लाह का। लहुम अन्नहु कलामुम मुहालुम बि हकीकतिही, यहां से साहिब हिदाया साहिबैन और इमाम शाफिई रहिमहुमुल्लाह की दलील जिक्र फरमा रहे हैं भाई। भाई देखिए, एक है हकीकत और एक है मजाज। हकीकत कहते हैं कि लफ्ज को उसी माना में इस्तेमाल किया जाए जिसके लिए उसको वजा किया गया है, जिसके लिए उसको मुकर्रर किया गया है। तो माना मौजू लहू में लफ्ज को इस्तेमाल करना यह है हकीकत, और लफ्ज को अगर किसी दूसरे माना में इस्तेमाल किया जाए तो इसको कहते हैं मजाज। मसलन उर्दू में शेर का लफ्ज जो है वो एक जंगली दरिंदे के लिए वजह है, तो ये शेर का लफ्ज जिक्र किया जाए और उससे जंगली दरिंदा मुराद लिया जाए, यानी वो माना जिसके लिए इसको मुकर्रर किया गया है, तो इसको कहेंगे हकीकत। मसलन आप कहते हैं कल मैंने जंगल में एक शेर देखा, तो ये लफ्ज अपने हकीकी माना में इस्तेमाल हो रहा है, तो इस लफ्ज को कहेंगे कि ये हकीकत है। और अगर शेर का लफ्ज जिक्र किया जाए और उससे बहादुर आदमी का माना किया जाए, बहादुर आदमी मुराद लिया जाए, तो ये इसका मजाजी माना है। तो लफ्ज को जिस माना के लिए वजा किया गया है उसी में उसको इस्तेमाल किया जाए तो इसे कहते हैं हकीकत, और उस लफ्ज को किसी दूसरे माना में इस्तेमाल किया जाए तो इसे कहते हैं मजाज। आप याद रखना, आपने उसूल फिका की किताबों में भी पढ़ा होगा कि ये जो मजाज है ये हकीकत का खलीफा है, ये हकीकत का नाइब है। जब तक लफ्ज के हकीकी माना पर अमल मुमकिन हो मजाज की तरफ नहीं जाएंगे। हां अलबत्ता जब हकीकी माना पर अमल ना हो सके तो फिर मजाजी माना की तरफ जाएंगे। हकीकत असल है और मजाज उसका खलीफा, तो जब तक असल पर अमल मुमकिन है हम मजाज की तरफ नहीं जाएंगे। अगर असल माना यानी अगर हकीकत मुमकिन ना हो या वहां कोई मानेअ आ जाए कि हकीकी माना नहीं किया जा सकता तो फिर हम मजाजी माना पर अमल करेंगे। तो साहिबैन और इमाम साहिब का इस बात में तो इत्तेफाक है कि ये जो मजाज है ये हकीकत का खलीफा है और नाइब है, लेकिन इस बात में इख्तिलाफ है कि ये मजाज किस एतबार से हकीकत का खलीफा है, किस एतबार से यह हकीकत का नाइब है। तो साहिबैन फरमाते हैं कि यह जो मजाज है यह हकीकत का खलीफा है हुक्म में, यह मजाज हुक्म में हकीकत का खलीफा है, जबकि इमाम साहिब फरमाते हैं कि यह मजाज तकल्लुम के अंदर हकीकत का खलीफा है और उसका नाइब है। आप इसका क्या माना, साहिबैन क्या फरमाते हैं कि ये मजाज हुक्म में खलीफा है हकीकत का, और इमाम साहब फरमाते हैं कि ये मजाज तकल्लुम में हकीकत का खलीफा है और उसका नाइब है। अब इसका माना क्या है वो अच्छी तरह समझ लें। याद रखिए साहिबैन ने क्या कहा कि मजाज हुक्म में हकीकत का खलीफा है, हुक्म का माना है बात भाई, हुक्म का माना है बात, इल्मी अंदाज में कहेंगे हुक्म और सादा लफ्जों में कहेंगे बात भाई। मसलन मैं आपसे कहता हूं जैदुन काइमुन, तो इल्मी अंदाज में कहेंगे कि जैद पर कियाम का हुक्म लगाया गया, जैद पर कियाम का हुक्म लगाया गया, यह इल्मी अंदाज में यूं बयान किया जाएगा, और सादा लफ्जों में यूं कहेंगे कि जैद के कियाम की बात की गई, इस जुमले में जैद के कियाम की, जैद के खड़े होने की बात की गई है, और इल्मी अंदाज में क्या कहेंगे कि इसमें जैद पर खड़े होने का हुक्म लगाया गया है। तवज्जो है, तो हुक्म को सादा लफ्जों में बात कहते हैं। तो साहिबैन की बात चल रही है, वो फरमाते हैं कि ये जो मजाज है ये हुक्म में हकीकत का खलीफा है, यानी लफ्ज का हकीकी माना किया जाएगा और उस हकीकी माना के अंदर जो बात बयान की जा रही है, जो हुक्म लगाया जा रहा है, अगर वो मुमकिन है लेकिन कोई मानेअ आ गया, कोई रुकावट आ गई कि हम वो माना नहीं कर सकते, तो फिर मजाजी माना की तरफ जाएंगे। साहिबैन क्या फरमाते हैं कि मजाज हुक्म में हकीकत का खलीफा है, लफ्ज जो है उसका हकीकी माना ये है असल और मजाज है उसका नाइब, तो जहां असल मुमकिन होगा वहीं पर नाइब भी आ सकता है। मसलन असल मुमकिन तो है लेकिन कोई मानेअ आ गया, कोई रुकावट आ गई, आप हकीकी माना नहीं कर सकते, तो फिर हम मजाजी माना की तरफ चले जाएंगे, और अगर हकीकी माना मुमकिन ही नहीं है तो फिर वहां मजाजी माना भी नहीं किया जा सकता। तो हुक्म का क्या माना है, बात, बल्कि और ज्यादा आसान लफ्जों में यूं कीजिए, हुक्म का यहां तर्जमा कर लें माना, हुक्म का क्या तर्जमा कर लें माना। तो साहिबैन के नजदीक मजाज खलीफा है हकीकत का माना में, माना के अंदर, यानी अगर जो कलाम किया गया उसका हकीकी माना मुमकिन है लेकिन कोई रुकावट आ रही है तो फिर हम मजाजी माना की तरफ जाएंगे, और अगर हकीकी माना मुमकिन ही नहीं है तो फिर वहां मजाजी माना भी नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ गई। मसलन यहां पर आका ने अपने हम उमर या अपने से बड़े गुलाम के बारे में क्या कहा, हाजबनी, कि ये मेरा बेटा है, ये इसका हकीकी माना है। और मजाजी माना हाजबनी का है हाजा हुर्रुन, ये आजाद है, लेकिन यहां हकीकी माना मुमकिन ही नहीं है। इस उमर का गुलाम तो इस आका का बेटा हो ही नहीं सकता, तो जब हकीकी माना मुमकिन ही नहीं है तो मजाजी माना भी यहां नहीं किया जाएगा और आका का यह कलाम लग्व चला जाएगा, बेकार चला जाएगा, इसको बातिल करार दिया जाएगा। आका के इस कलाम को बातिल करार दिया जाएगा कि इसने वैसे ही बेकार बात की, इसका कोई फायदा नहीं, इसकी वजह से ना ये गुलाम इसका बेटा बना और ना ये आजाद हुआ। भाई बात समझ में आ गई। तो साहिबैन के नजदीक मजाज हकीकत का खलीफा है हुक्म में, यानी माना के एतबार से। अगर कलाम का हकीकी माना मुमकिन है, अलबत्ता कोई रुकावट आ रही है, तो फिर हम मजाजी माना की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अगर कलाम का हकीकी माना ही मुमकिन नहीं है, जैसे हाजा बनी, ये मेरा बेटा है, ये माना तो यहां मुमकिन ही नहीं है, इस उम्र का गुलाम तो इस आका का बेटा हो ही नहीं सकता, तो जब हकीकी माना मुमकिन ही नहीं है तो फिर मजाजी माना की तरफ भी नहीं जाएंगे, मजाजी माना भी इसका नहीं किया जा सकता।
जी।
बात समझ भी आई कि नहीं?
जी।
फिर समझें, फिर समझें। साहिबैन फरमाते हैं कि दरअसल जब कोई शख्स कलाम करता है तो पहले जहन में हकीकी माना आता है और फिर हकीकी माना से जहन मुंतकिल होता है मजाजी माना की तरफ। तो जब एक मकाम पर हकीकी माना का तसव्वुर ही न किया जा सके तो वहां मजाजी माना का भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता। या आका ने अपने हम उमर को या अपने से बड़ी उम्र के गुलाम को कहा हाजबनी, ये मेरा बेटा है, यहां हकीकी माना का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता कि ये आका का बेटा हो जाए। भाई तो जब हकीकी माना का तसव्वुर नहीं हो सकता तो यहां मजाजी माना का भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मजाजी माना नाइब है असल का, और जब असल मुमकिन नहीं तो फिर मजाजी माना भी मुमकिन नहीं। लगता है बात अभी तक पूरी वाजे नहीं हुई। भाई देखिए ना, ये मजाज नाइब है हकीकत का, हकीकत है असल और मजाज है नाइब। नाइब कहां आता है? जहां असल होता है। जब एक जगह असल की नहीं है तो वहां नाइब कहां से आएगा? भाई जब एक मकाम असल का नहीं है वहां असल नहीं आ सकता, तो नाइब कहां से? नाइब ने तो असल की जगह पर आना था, जब असल ही नहीं मुमकिन तो नाइब कहां से मुमकिन है? तवज्जो है। मसलन देखो, एक बादशाह है एक इलाके का, वो बादशाह अगर हज पर जाता है तो अपने पीछे अपना नाइब बनाकर जाएगा। यह नाइब किसकी जगह आया? बादशाह की, यानी असल की जगह पर आया। अगर एक मकाम ऐसा है कि वहां बादशाह का तसव्वुर ही नहीं हो सकता तो वहां नाइब का कैसे तसव्वुर किया जा सकता है? नाइब ने तो असल की जगह पर आना है, जब असल ही नहीं है, असल की जगह ही नहीं है, तो नाइब उसका कहां से आ गया? भाई बात समझ में आ गई। इसको और बेहतर अंदाज में यूं समझो कि मसलन असल एक कुर्सी पर बैठा हुआ है, मालूम हुआ यह असल का मकाम है, असल यहां से उठकर चला जाएगा तो इस कुर्सी पर नाइब आकर बैठ जाएगा। अगर एक मकाम पर असल की कुर्सी नहीं है, असल ही नहीं आ सकता, तो वहां नाइब कहां से उसकी जगह पर आएगा? वहां तो जगह ही नहीं है। भाई बात समझ में आ गई। तो यहां पर भी इसी तरह है। साहिबैन फरमाते हैं कि जो मजाज है यह हकीकत का खलीफा है, उसका नाइब है माना के एतबार से, तो यह उस हकीकत की जगह पर आएगा। जब हकीकी माना में कोई मान्य आ जाए तो उसकी जगह पर मजाजी माना की तरफ हम जाएंगे, लेकिन अगर हकीकी माना मुमकिन ही नहीं है तो फिर उसकी जगह नाइब भी नहीं आ सकता, क्योंकि नाइब ने असल की जगह आना है, जब असल नहीं मुमकिन तो नाइब कैसे मुमकिन हो सकता है? बात समझ में आ गई। तो साहिबैन के नजदीक मजाज जो है वो नाइब है और खलीफा है हकीकत का हुक्म में, यानी माना के एतबार से, और जहन में पहले हकीकी माना का तसव्वुर आता है और उसके बाद फिर जहन मुंतकिल होता है मजाजी माना की तरफ, और जहां हकीकी माना का तसव्वुर महाल हो वहां मजाजी माना का तसव्वुर भी महाल होगा। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि जो मजाज है यह हकीकत का खलीफा है तकल्लुम में। तकल्लुम का माना है गुफ्तगू और बातचीत भाई। तो इमाम साहब फरमाते हैं यह मजाज खलीफा है हकीकत का तकल्लुम में, बातचीत में, यानी अल्फाज में, यानी अल्फाज के एतबार से मजाज उसका खलीफा है। वो अल्फाज जो कहने वाले ने कहे हैं अगर वो अरबी एतबार से ठीक हैं लेकिन हकीकी माना नहीं किया जा सकता तो फिर हम मजाजी माना की तरफ चले जाएंगे। जैसे हाजबनी, हाजबनी के अल्फाज आप देखें, इसमें हाजा है मुबतदा और इबनी ये है उसकी खबर, और मुबतदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। तो आका का ये कलाम अरबी अल्फाज के एतबार से बिल्कुल सही है, अल्फाज के एतबार से इस कलाम में कोई खराबी और कोई गलती नहीं। तो लफ्जों के एतबार से जब यह कलाम ठीक है और हकीकी माना यहां नहीं किया जा सकता क्योंकि गुलाम आका की उम्र का है, आका से भी बड़ा है, तो फिर मजाजी माना की तरफ चले जाएंगे। तो इमाम साहब के नजदीक मजाज हकीकत का खलीफा है तकल्लुम में, यानी अल्फाज के एतबार से। मसलन जब कोई शख्स कलाम करता है, तकल्लुम करता है, तो उसने जो अल्फाज कहे अगर वो अरबी एतबार से ठीक हैं तो उनका मफहूम जहन में आएगा और उस मफहूम से जहन फिर मजाजी माना की तरफ मुंतकिल हो जाएगा
जी।
इस मफहूम से जहन मजाजी माना की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। इसमें यह नहीं देखा जाएगा कि यह हकीकी माना मुमकिन है या मुमकिन नहीं है भाई। अल्फाज ठीक होने चाहिए और हाजबनी ये जुमला भी अरबी एतबार से बिल्कुल ठीक है। तो जब हकीकी माना यहां नहीं किया जा सकता तो अब मजाजी माना यानी हादा हुर्रुन करना पड़ेंगे कि ये गुलाम आजाद है। तो हासिल कलाम ये साहिबैन के नजदीक कलाम का हकीकी माना मुमकिन न हो तो मजाजी माना भी नहीं किया जा सकता, जबकि इमाम साहब के नजदीक हकीकी माना को नहीं देखेंगे बल्कि अल्फाज को देखेंगे। अगर अल्फाज अरबी एतबार से सही हैं लेकिन हकीकी माना नहीं किया जा सकता तो फिर मजाजी माना किया जाएगा। बात समझ में आ गई। तो देखिए अब किताब पर लहुम, उनकी दलील ये है, ये लहुम में हुम जमीर राजे है साहिबैन और इमाम शाफई रहिमहुल्ला की। लहुम साहिबैन और इमाम शाफई रहिमहुल्ला की दलील ये है कि अन्नहु कलामुम मुहालुम बिहकीकतिही। मुहाल भाई याद रखो ये मीम के जम्मा के साथ है अरबी जुबान में, और उर्दू जुबान में अब ये मीम के फतहा के साथ राइज हो गया है, महाल बोलते हैं उर्दू में भाई। तो उर्दू में महाल इस्तेमाल करेंगे और अरबी में मुहाल है मीम के जम्मा के साथ। तो लहुम इनकी दलील यह है कि अन्नहु कलामु मुहालुम बिहकीकतिही, कि यह ऐसा कलाम है जो अपनी हकीकत के एतबार से महाल है यानी मुमकिन नहीं है। कौन सा कलाम? आका ने अपने हम उमर या अपने से बड़े गुलाम को हाजबनी कहा, तो यह अपने हकीकी माना के एतबार से नामुमकिन है, यह गुलाम इस आका का बेटा नहीं हो सकता। तो कहते हैं अन्नहु कलामुम मुहालुम बिहकीकतिही, यह ऐसा कलाम है जो अपनी हकीकत के एतबार से महाल है। फयुरद्दु वयलगु, तो इसको रद्द किया जाएगा, वयलगु और यह बातिल होगा, यह कलाम बातिल होगा, बेकार होगा, इसका कोई फायदा नहीं। का कौली ही, ये इसी तरह है जैसे कि आका का यह कौल है आतकतु का कबला अन उखलका। आका अपने गुलाम से कहता है आतकतु का, मैंने तुझे आजाद कर दिया, कबला अन उखलका अपने पैदा होने से पहले, मैंने अपने पैदा होने से पहले ही तुम्हें आजाद कर दिया। या यूं कहता है आतकतु का कबला अन तुखलका, मैंने तुझे आजाद कर दिया तेरे पैदा होने से पहले। तो इस सूरत में इमाम साहब भी फरमाते हैं कि यह कलाम लगव है, बेकार है, इससे गुलाम आजाद नहीं होगा। चाहे आका ने गुलाम को यह कहा कि मैंने तुझे अपने पैदा होने से पहले आजाद कर दिया, या आका ने यूं कहा कि मैंने तेरे पैदा होने से पहले तुझे आजाद कर दिया, तो दोनों सूरतों में इमाम साहब भी फरमाते हैं यह कलाम लगव है, बेकार है, इससे गुलाम आजाद नहीं होगा, और साहिबैन भी फरमाते हैं कि इस सूरत में यह गुलाम आजाद नहीं होगा। साहिबैन फरमाते हैं कि देखो अरबी एतबार से यह कलाम बिल्कुल सही है, اعتقتك قبل ان اخلق یا اعتقتك قبل ان تخلق. عربی اعتبار سے اس کلام میں کوئی غلطی نہیں ہے. کون سا کلام؟ اعتقتك قبل ان اخلق یا اعتقتك قبل ان تخلق. تو عربی اعتبار سے یہ کلام بالکل صحیح ہے، یہ الفاظ بالکل صحیح ہیں. تو امام صاحب کے ضابطے کے مطابق جب الفاظ صحیح ہیں اور حقیقی معنی نہیں لے سکتے تو مجازی معنی مراد لینا چاہیے اور غلام کو آزاد ہونا چاہیے. لیکن امام صاحب بھی ان الفاظ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آقا کا یہ کلام لغو ہے، بیکار ہے. معلوم ہوا بات وہی ہے جو ہم نے کہی کہ حقیقی معنی ٹھیک ہو لیکن کوئی مانع آ جائے تو پھر مجازی معنی کی طرف جائیں گے. اور اگر حقیقی معنی ممکن ہی نہیں ہے، جیسے یہاں پر اعتقتک قبل ان اخلق، میں نے تجھے آزاد کر دیا اپنے پیدا ہونے سے پہلے یا تیرے پیدا ہونے سے پہلے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کوئی شخص دوسرے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی آزاد کر دے. تو جب یہاں حقیقی معنی ممکن نہیں تو مجازی معنی بھی ممکن نہیں ہے، لہذا مجازی معنی نہیں کیا جائے گا اس کا. اور امام صاحب بھی ان الفاظ میں یہی فرماتے ہیں کہ یہاں مجازی معنی نہیں کیا جائے گا. تو صاحبین فرماتے ہیں کہ اس سے ہمارے مذہب کی تائید ہوتی ہے کہ حقیقی معنی اگر ممکن نہ ہو تو پھر مجازی معنی بھی نہیں کیا جائے گا، اور یہاں امام صاحب بھی یہی فرماتے ہیں. تو جواب اس کا یاد رکھنا، امام صاحب کی طرف سے جواب یہ ہے. امام صاحب کیا فرماتے تھے کہ یہ مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا تکلم میں، یعنی لفظوں کے اعتبار سے، یعنی لفظوں کو صحیح ہونا چاہیے عربی اعتبار سے. اور حاضبنی یہ کلام عربی اعتبار سے بالکل صحیح ہے، لیکن پھر کوئی مانع آ گیا ہم حقیقی معنی نہیں کر سکتے تو پھر مجازی معنی کی طرف چلے جائیں گے. تو امام صاحب کی طرف سے جواب یہ ہے کہ یہ جو کلام ہے اعتقتک قبل ان اخلق یا قبل ان تخلق، کہ کلام کا صرف عربی اعتبار سے صحیح ہونا کافی نہیں بلکہ عقلا وہ ممکن بھی ہو سکے. عقلا ممکن بھی ہو سکے. تو یہ کلام عربی اعتبار سے تو صحیح ہے لیکن عقلا یہ ممکن ہی نہیں ہے. پیدائش سے پہلے کوئی کسی کو آزاد نہیں کر سکتا، پیدائش سے پہلے کوئی کسی کو آزاد نہیں کر سکتا، تو لہذا یہ عقلاً ممکن ہی نہیں ہے. اور ہاذا ابنی یہ عقلاً ممکن ہے، یہ والا کلام عقلاً مثلاً ایک آدمی اپنے حقیقی بیٹے کو کہتا ہے ہاذا ابنی یہ میرا بیٹا ہے، دیکھو کلام کا معنی صحیح ہے یا نہیں. اور یہاں پر یہ جو مثال چل رہی ہے، آقا نے اپنے ایسے غلام کی طرف اشارہ کیا جو عمر میں اس کے برابر ہے یا عمر میں اس سے بڑا ہے کہ ہاذا بنی، تو کہتے ہیں یہاں پر یہ حقیقی معنی ممکن نہیں. وہ اس وجہ سے نہیں کہ عقلن ہی یہ معنی ممکن نہیں ہے، یہاں پر یہ جو ممکن نہ رہا وہ صرف اس خاص مشارون الیہ کی وجہ سے کہ یہ جو غلام تھا جس کی طرف آقا نے اشارہ کر کے کہا تھا ہاذا ابنی یہ میرا بیٹا ہے، یہ اس مشارون الیہ غلام کی وجہ سے یہ ہاذا ابنی ممکن نہ رہا، کیونکہ یہ آقا کا ہم عمر ہے یا عمر میں اس سے بڑا ہے. اگر یہ غلام کم عمر ہوتا تو پھر ہاذا ابنی کا لفظ صحیح ہوتا. تو معلوم ہوا ہاذا ابنی کا جو معنی ہے وہ عقلا ممکن ہے. یہاں صرف ایک مانع آیا کہ یہ غلام آقا کا ہم عمر ہے یا آقا سے عمر میں بڑا ہے، اس لیے یہاں حقیقی معنی پر عمل نہ ہو سکا. اگر کوئی کم عمر غلام ہوتا تو اس کی حقیقی معنی پر عمل ممکن تھا بھائی، جبکہ یہ جو کلام آپ ذکر کر رہے ہیں یہاں تو حقیقی معنی ممکن ہی نہیں ہے بھائی. عقلاً ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص پیدائش سے پہلے دوسرے کو آزاد کر دے. بات سمجھ میں آ گئے. تو حاصل کلام کیا؟ صاحبین کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے معنی کے اندر. اگر حقیقی معنی ممکن ہے لیکن کوئی رکاوٹ آ گئی، کوئی مانع آ گیا، تو پھر مجازی معنی کی طرف چلے جائیں گے. اور اگر حقیقی معنی ممکن ہی نہیں ہے تو پھر مجازی معنی کی طرف بھی رجوع نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جب حقیقت محال ہے تو نائب یعنی مجاز بھی محال ہوگا بھائی. جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو مجاز جو ہے یہ خلیفہ ہے حقیقت کا تکلم میں، یعنی لفظوں کے اندر، یعنی وہ لفظ صحیح ہوں عربی اعتبار سے اور نیز عقلاً ممکن بھی ہوں. اس خاص مقام پر جس مقام پر ان لفظوں کو ادا کیا گیا ہے اس کو نہ دیکھیں، اور مقامات پر یہی لفظ کہے جائیں تو ان کا معنی صحیح ہے یا نہیں. اگر ان کا معنی عقلاً ممکن ہے اور مقامات پر तो फिर मालूम हुआ यह कलाम लफ्जों के एतबार से सही है। जब लफ्जों के एतबार से सही है और हकीकी माना यहां मुराद नहीं लिया जा सकता तो फिर मजाजी माना की तरफ चले जाएंगे। दोबारा तर्जमा देखिए, लहुम साहिबैन और इमाम शाफी रहीमहुमुल्लाह की दलील यह है कि अन्नहु कलाम मुहालुम बि हकीकती ही, कि ये जो हाजा बनी, ये जो कलाम किया आका ने अपने बराबर के या अपने से बड़े उम्र के गुलाम की तरफ मुतवज्जे होकर, ये ऐसा कलाम है मुहालुम बि हकीकती ही, जो अपनी हकीकत के एतबार से महाल है, यानी इसका हकीकी माना मुमकिन नहीं है। फयुरद्दु वयलगु, तो लिहाजा इसको रद्द किया जाएगा और ये बातिल होगा। का कौली ही, जैसे कि आका का ये कौल है, आतक्तु का कबल अन उखलका, कि मैंने तुझे आजाद किया अपनी पैदाइश से पहले, और कबल अन तुखलका, या मैंने तुझे आजाद किया तेरी पैदाइश से पहले। तो जैसे ये कलाम जो है आतक्तु का कबल अन उखलका या कबल अन तुखलका, ये बेकार है और लगव है। इसी तरह हाजबनी भी अपने बराबर के या अपने से बड़ी उम्र के गुलाम को कहा तो ये कलाम भी बातिल है और बेकार है भाई। वली अबी हनीफा रहिमहुल्ला, और इमाम साहेब की दलील यह है कि अन्नहु कलामुम मुहालुम बिहकीकतिही, कि यह कलाम अपनी हकीकत के एतबार से महाल है, लेकिन नहु सहीहुम बिमजाजिही, लेकिन यह कलाम अपने मजाज के एतबार से सही है। मजाजी माना यहां सही है, लिअन्नहु इखबारुन अन हुर्रियतिहि मिन हीन मिल्किहि, लिअन्नहु इखबारुन, इसलिए क्योंकि यह खबर दी जा रही है अन हुर्रियतिहि, उस गुलाम के आजाद होने की, मिन हीन मिल्किहि, उसके मालिक होने के वक्त से। यानी गुलाम इस आका के बराबर है उम्र में या आका से बड़ा है, और आका उसको कहता है हाजबनी। अब यहां हकीकी माना तो मुमकिन नहीं, लेकिन मजाजी माना मुमकिन है। यानी आका उसको यह खबर दे रहा है कि जिस वक्त से मैं तेरा मालिक हुआ हूं तू उस वक्त से आजाद है जी। क्योंकि आका ने क्या कहा, हां आजाद नहीं, ये मेरा बेटा है, और बेटा जो होता है वो मालिक पर आजाद होता है। मालूम हुआ आका कह रहा है जब से मैं तुम्हारा मालिक बना हूं तुम आजाद हो। तो कहते हैं लिअन्नहु इखबारुन अन हुर्रियतिही मिन हीन मिल्किही, इसलिए क्योंकि यह खबर देना है उस गुलाम की आजादी की, मिन हीन मिल्किही, अपनी मिल्कियत के वक्त से। वहादा, और ये इसलिए, यानी ये जो आका ने अपने गुलाम से कहा हाजबनी, इसको हमने खबर करार दिया हुर्रियत से। भाई क्यों हुर्रियत से खबर क्यों करार दिया, अब उसकी वजह जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं ये इसका मजाजी माना है, और मजाजी माना यहां दो सूरतें जिक्र करेंगे कि बाज औकात अरबी जुबान में सबब को जिक्र किया जाता है और इरादा मुसबब का होता है। जैसे अरबी में कहते हैं कोई आदमी बहुत ज्यादा सखी हो, बहुत ज्यादा अताया करने वाला हो, तो अरबी में कहते हैं आजुमत यदु फुलानी, फुलां का हाथ बहुत बड़ा है जी। या फुलां का हाथ बहुत बड़ा हो गया जी। और मुराद क्या है, इसके एहसानात बहुत ज्यादा हो गए, इसकी सखावत बहुत ज्यादा हो गई, इसलिए क्योंकि हाथ सबब है सखावत का जी। तो हाथ हुआ सबब और आताया और सखावत ये उसका मुसबब है, तो सबब बोलकर किसका इरादा किया गया, मुसबब का। तो अरबी जुबान में ये शाय है और राइज है कि लफ्ज सबब वाला जिक्र किया जाता है और इरादा मुसबब वाला। और यहां पर भी इसी तरह है कि जब भी ममलूक के अंदर बेटा होना साबित होगा जी। वो फौरन आजाद हो जाएगा। तो बेटा होना ममलूक के अंदर ये सबब है और आजाद होना उसका मुसबब है। मसलन आका है, उसकी बांदी ने एक बच्चे को जन्म दिया, आका ने कहा ये मेरा बेटा है, तो जैसे ही बेटा होना साबित होगा साथ ही वो आजाद भी हो जाएगा, क्योंकि अपना बेटा इंसान का ममलूक नहीं हो सकता। इस बात पर इजमा है भाई कि इंसान जैसे ही अपने बेटे का मालिक बनेगा वो बेटा उस पर फौरन आजाद हो जाएगा, इस पर सबका इजमा है। तो जब बांदी के बेटे के बारे में आका ने कह दिया ये मेरा बेटा है, तो ये बेटा फौरन आजाद हो जाएगा, क्योंकि बेटा होना सबब है आजादी का। जब बेटा होना साबित होगा साथ ही आजादी भी साबित हो जाएगी। तो कहते हैं वहादा लि अन्नल मुनुवत फिल ममलू की सबब उन लिहुर्रियती ही, और ये इसलिए क्योंकि बेटा होना, बुनुवत का क्या माना है, बेटा होना, ये मस्तर है वहादा, और ये इस वजह से यानी ये जो हमने ये हाजा बनी को आजादी से खबर करार दिया, आजादी से मजाज करार दिया, उसकी वजह जिक्र कर रहे हैं वहाजा, और ये इस वजह से लि अन्नल बुनुवत फिल ममलूक की, इसलिए क्योंकि ममलूक यानी गुलाम के अंदर बेटा होना सबबुन लिहुर्रियती ही, ये उसकी आजादी का सबब है। इम्मा इजमाअन औ सिलतन लिल कराबती, ममलूक के अंदर बेटा होना, ममलूक के अंदर बेटा होने का वसफ साबित होगा तो साथ ही हुर्रियत भी साबित हो जाएगी, तो बेटा होना सबब है आजाद होने का। इम्मा इजमान, या तो ये इजमान है, ये नकली दलील जिक्र कर दी, यानी इस पर इजमा है सबका कि इंसान जब भी अपने बेटे का मालिक बनेगा वो उस पर आजाद हो जाएगा। जैसे मैंने मिसाल जिक्र कर दी, बांदी ने बच्चे को जन्म दिया, आका ने क्या कहा, ये मेरा बेटा है, तो इजमा है इस बात पर कि ये आजाद होगा, तो इसलिए क्योंकि बेटा होना ममलूक में ये आजादी का सबब है। इम्मा इजमान, या तो इजमान औ सिलतन लिल कराबती, सिला का माना है इनाम और एहसान भाई, लिल कराबती, कराबत कहते हैं रिश्तेदारी को, औ सिलतन लिल कराबती या बतौर एहसान के लिल कराबती रिश्तेदारी की वजह से, ये अकली दलील जिक्र कर दी। अकल भी यही तकाजा करती है कि अपने करीबी रिश्तेदार के मालिक बने हो तो बतौर एहसान के, बतौर इनाम के इसको आजाद होना चाहिए, बतौर इनाम और एहसान के इसको आजाद होना चाहिए। तो देखो साहिबे हिदायत ने दोनों दलीलें जिक्र कर दी कि इंसान जब अपने बेटे का मालिक बनता है तो बेटा आजाद हो जाता है, या तो नकली दलील की वजह से कि इस पर सबका इजमा है, और अगर आप अकली दलील चाहते हैं तो अकली दलील के एतबार से भी ये आजाद हो जाएगा क्योंकि ये अपना करीबी रिश्तेदार है और करीबी रिश्तेदार के साथ शरीयत ने हमें एहसान करने का हुक्म दिया है। तो कहते हैं ममलूक के अंदर बेटा होना ये उसकी आजादी का सबब है। इम्मा इजमान, या तो बैतबार इजमा के, औसिलतन लिल कराबती या बैतबार एहसान के, लिल कराबती रिश्तेदारी की वजह से, वह इतलाक उस सबबी व इरादतुल मुसब्बबी मुस्तजाजुन फिल लुगती तजव्वुजन, ये तर्जमा समझ लीजिए भाई, वह इतलाक उस सबबी और सबब का इतलाक करना यानी सबब को बोलना, वह इरादतुल मुसब्बबी और मुसब्बब का इरादा करना, मुस्तजाजुन फिल लुगती इस्तजाज यस्तजीज इस्तिजाजन का माना है इजाजत तलब करना, इस्तजाज यस्तजीज इस्तिजाजन इसका माना है इजाजत तलब करना, तो मुस्तजाज वो जिसके बारे में इजाजत तलब की जाए, यानी आसान लफ्जों में कहो मुस्तजाज का माना जिसकी इजाजत हो, मुस्तजाज जिसकी जिसके बारे में इजाजत तलब की गई यानी जिसकी इजाजत है भाई। और तजव्वुजन, तजव्वुज ये मस्दर है भाई बमाने मजाज के, तो कहते हैं वह इतलाक उस सबबी व इरादतुल मुसब्बबी मुस्तजाज उन फिल लुगती और सबब का इतलाक करना और मुसब्बब का इरादा करना मुस्तजाज उन फिल लुगती इसकी अरबी जुबान में इजाजत है। तजव्वुजन बैतबार मजाज के, यानी मजाज होने के एतबार से इसकी इजाजत है कि सबब का लफ्ज जिक्र किया जाए और इरादा मुसब्बब का किया जाए। वली अन्नल हुर्रियत लाजिमतुन लिल बुनुवती फिल ममलूक, यहां से दूसरा अलाका जिक्र कर रहे हैं भाई, याद रखो हकीकी और मजाजी माना के अंदर मुनासबत जरूरी है, हकीकी और मजाजी माना में मुनासबत जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बकरी का लफ्ज जिक्र करें कि मैंने बकरी को देखा और इरादा हाथी का कर लें, क्योंकि बकरी और हाथी के दरमियान कोई मुनासिबत नहीं है। तो हकीकी और मजाजी माना में मुनासिबत का होना जरूरी है। यह यूं कहे अलाका, अलाका का माना है ताल्लुक, हकीकी और मजाजी माना में मुनासिबत का होना जरूरी है, ताल्लुक का होना जरूरी है, अलाके का होना जरूरी है, यह यूं कहे रब्त का होना जरूरी है भाई। तो एक अलाका या एक मुनासिबत साहिब हिदायत ने जिक्र फरमा दी कि लफ्ज क्या जिक्र किया, हाजा बनी, और इरादा किसका किया, आजादी का, और बेटा होने और आजादी के अंदर मुनासिबत मौजूद है कि जब भी बेटा होने का वसफ ममलूक में साबित होगा तो उसके साथ हुर्रियत भी साबित हो जाएगी, क्योंकि बेटा होना सबब है आजादी का। तो दोनों में सबबियत वाला ताल्लुक है, दोनों में सबबियत वाला ताल्लुक है भाई। और अब दूसरा इलाका बयान कर रहे हैं साहिब हिदाया के, दोनों में लुजूम वाला ताल्लुक है, अपने ममलूक के अंदर बेटा होने का वसफ साबित हो जाए तो इसके साथ आजादी लाजिम है। बेटा हो और ममलूक हो ऐसा नहीं हो सकता, बेटे के साथ आजादी लाजिम है। तो अपने ममलूक में जब बेटा होने का वसफ साबित होगा तो उसके साथ लाजिम है कि आजादी भी साबित होगी। हाजबनी हकीकी माना क्या, ये मेरा बेटा है, और मजाजी माना क्या, ये आजाद है। तो दो इलाके बयान कर दिए साहिबे हिदाया ने, एक ये कि ये सबबियत वाला इलाका है, जिक्र सबब को किया और इरादा मुसबब का किया, और कलाम अरब में ऐसा होता रहता है। और दूसरा इलाका बयान करेंगे कि जिक्र मलजूम को किया और इरादा लाजिम का किया, और मलजूम बोलकर लाजिम का इरादा किया जाता है कलाम अरब के अंदर भाई। जैसे देखो भाई, जैसे देखो मसलन जैद बहादुर है और शेर भी बहादुर है, और शेर के साथ आदतन बहादुरी को लाजिम समझा जाता है कि यह बहादुरी शेर से जुदा नहीं हो सकती, आदतन बहादुरी को शेर के साथ लाजिम समझा जाता है। तो अब जैद की मुशाबहत आ गई शेर के साथ बहादुरी में, यानी उस शेर के वस्फे लाजिम में। जैद की मुशाबहत है किसके साथ, शेर के साथ, उस शेर के वस्फे लाजिम में। तो लिहाजा जैद मेरे पास आया तो मैं कह सकता हूं शेर आ गया
जी।
देखो बहादुर आदमी आता है तो लोग कहते हैं शेर आ गया, वो दरअसल इसको तशबीह दे रहे हैं शेर के साथ उसके वस्फे लाजिम में। मालूम हुआ यहां पर शेर से मुराद बहादुर आदमी है, जिस तरह शेर के साथ बहादुरी लाजिम है इसी तरह इस आदमी के साथ भी बहादुरी लाजिम है भाई। तो मालूम हुआ हकीकी माना और मजाजी माना में मुनासिबत का होना जरूरी है, ताल्लुक का होना जरूरी है। और यहां पर आका ने हाजबनी कहा और इरादा हाजा हुर्रुन का किया, और दोनों में मुनासिबत मौजूद है, सबबियत वाला ताल्लुक भी है और लुजूम वाला ताल्लुक भी है भाई। अब दूसरा इलाका बयान कर रहे हैं, कहते हैं वली अन्नल हुर्रियत लाजिमतुन लिल बुनुवति फिल ममलूकी, इसलिए क्योंकि आजादी जो है वो लाजिम है लिल बुनुवति बेटा होने के साथ, फिल ममलूकी ममलूक में, ममलूक में जब भी बेटा होने का वसफ साबित होगा तो साथ ही आजादी भी साबित हो जाएगी। यह माना है वली अन्नल हुर्रियत लाजिमतुन लिल बुनुवति फिल ममलूकी, इसलिए क्योंकि ममलूक के अंदर बेटा होने के वसफ के साथ आजादी लाजिम है। वल मुशाबहतु फी वस्फिन लाजिमिन मिन तुरुकिल मजाजी अला माउरिफा, वल मुशाबहतु फी वस्फिन लाजिमिन, और मुशाबे होना वस्फे लाजिम में, मुशाबे होना ऐसे वसफ में जो एक चीज के साथ लाजिम है, मिन तुरुकिल मजाजी, ये मजाज के तरीकों में से है, अला माउरिफा उस वजह से जो जाना गया है, जो जाना गया है यानी उसूल की किताबों में जैसे के जाना गया है भाई। तो कहते हैं वल मुशाबहतु फी वस्फिन लाजिमिन मिन तुरुकिल मजाजी अला माउरिफा, और वस्फे लाजिम के अंदर मुशाबे होना यह मजाज के तरीकों में से है, अला माउरिफा उस वजह से जो जाना गया है यानी जो उसूल फिका की किताबों में जाना गया है, फयुहमलु अलैहि, लिहाजा इसी पर इसको महमूल किया जाएगा, आका के इस कौल को इसी पर महमूल किया जाएगा। आका ने क्या कहा, हाजबनी, इस कौल को इसी पर यानी हुर्रियत पर ही महमूल किया जाएगा, क्योंकि बेटे के साथ हुर्रियत लाजिम है या बेटा होना यह सबब है हुर्रियत का। तो कहते हैं फयुहमलु अलैहि, तो लिहाजा आका के इस कौल को इसी माना पर यानी मजाज पर महमूल किया जाएगा, तहर्रुजन अनिल इल्गाई, अलगा युल्गी, इल्गा का माना है बातिल करार देना, बेकार करार देना, तहर्रुजन अनिल इल्गाई, तहर्रुज का माना है बचना, तहर्रुजन अनिल इल्गाई, इसको बातिल करार देने से बचने के लिए, भाई याद रखो, फुकहा की कोशिश होती है कि आकिल बालिग आदमी के कलाम को बेकार होने से बचाया जाए, उसको बातिल होने से बचाया जाए, क्योंकि एक अकल वाला बालिग आदमी एक बात कर रहा है, लिहाजा मुनासिब यह है, इसका कोई माना होना चाहिए, इसको बेकार नहीं होना चाहिए। तो इस आकान ने अपने बराबर के या अपने से बड़े गुलाम को कहा है हाजबनी, तो साहिबैन के नजदीक तो यह कलाम लग हुआ, बेकार हुआ, इसका कोई माना नहीं। लेकिन इमाम साहब फरमाते हैं कि आकिल बालिग आदमी के कलाम को लग होने से बचाना चाहिए, लिहाजा जब हकीकी माना यहां मुमकिन नहीं है तो इसको मजाजी माना पर महमूल कर दिया जाएगा, ताकि इस कलाम को बातिल ना करार देना पड़े। भाई तो ये माना है फयुहमलु अलैहि, लिहाजा आका के इस कौल को मजाज पर महमूल किया जाएगा, तहर्रुजन अनिल इल्गाई, इसको बातिल करार देने से बचने के लिए, बिखिलाफ मस्तु शहीद बिही, इस्तिशहाद का माना है इस्तिदलाल करना, दलील बनाना। भाई साहिबैन ने बतौर दलील के जिक्र किया था कि अगर आका अपने गुलाम से कहे अअतक्तुका कबल अन उखलका या कबल अन तुखलका, कि मैंने तुझे आजाद किया अपने पैदा होने से पहले, या मैंने तुझे आजाद किया तेरे पैदा होने से पहले, तो जैसे इस कलाम का हकीकी माना मुमकिन नहीं तो इसका मजाजी माना भी नहीं किया जाएगा, मजाजी माना भी नहीं किया जाएगा। तो उसका आप जवाब दे रहे हैं साहिब हिदाया इमाम साहिब की तरफ से कि हमने बयान कर दिया कि हकीकी और मजाजी माना में कोई मुनासबत जरूरी है, कोई ताल्लुक और कोई रब्त होना जरूरी है, जबकि आतख्तु का कबला अन उखलका या कबला अन तुखलका, इसका माना आप ये करना चाहते हैं कि ये उसकी आजादी की खबर दे रहा है अपने मालिक होने के वक्त से, कि मैं जब से तेरा मालिक बना हूं उस वक्त से तू आजाद है, मैं जब से तेरा मालिक बना हूं उस वक्त से तू आजाद है, अपने मालिक होने के वक्त से इसको आजादी की खबर दे रहा है, यानी इसको आजाद कर रहा है, ये इसका मजाजी माना आप करना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ये मजाजी माना आप नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि हकीकी और मजाजी माना में रबत जरूरी है, और यहां हकीकी माना और मजाजी माना में कोई रबत नहीं है, यहां हकीकी माना और मजाजी माना में कोई रबत और कोई ताल्लुक और कोई मुनासिबत नहीं है, लिहाजा आप इसका ये वाला मजाजी माना नहीं कर सकते। भाई देखिए ना, हकीकी और मजाजी माना में मुनासिबत जरूरी है, या सबबियत वाला अलाका हो, या लुजूम वाला अलाका हो, या कोई और अलाका होना चाहिए, ताल्लुक होना चाहिए, लेकिन यहां हकीकी और मजाजी माना में कोई ताल्लुक नहीं है। तो साहिब हिदाया जवाब दे रहे हैं इमाम साहिब की तरफ से कि हमने आपको बतला दिया कि हकीकी और मजाजी माना के दरमियान कोई ना कोई मुनासिबत ताल्लुक और रब्त का होना जरूरी है, जैसे हमने जिक्र कर दिया कि बेटा होना और आजादी इन दोनों के दरमियान सबबियत वाला ताल्लुक है, बेटा होना सबब है आजादी का, या इन दोनों के दरमियान लुजूम वाला ताल्लुक है कि ममलूक में बेटा होने का वसफ साबित होगा तो उसके साथ लाजिम है आजादी का वसफ भी साबित हो जाएगा। तो हकीकी और मजाजी माना में कोई रब ताल्लुक और मुनासबत जरूरी है, लेकिन यहां जो आप दलील जिक्र कर रहे हैं, यहां हकीकी और मजाजी माना में कोई मुनासबत नहीं। हकीकी माना क्या, कि मैंने तुझे अपनी पैदाइश से पहले आजाद किया, और मजाजी माना क्या, कि मैं जब से तेरा मालिक बना हूं तब से तू आजाद है। कहते हैं दोनों के अंदर कोई मुनासिबत नहीं है। भाई किस तरह मुनासिबत नहीं है, कहते हैं देखो हकीकी माना क्या है कि मैंने तुझे आजाद किया अपनी पैदाइश से पहले या तेरी पैदाइश से पहले। भाई पैदाइश से पहले तो कोई किसी को आजाद नहीं कर सकता जी। क्योंकि पैदाइश से पहले मालिक ही नहीं है, मालिक होगा तो फिर उसके बाद आजादी हो सकती है, तो पैदाइश से पहले तो कोई किसी का मालिक नहीं हो सकता जी। और मजाजी माना क्या था कि जब से मैं तेरा मालिक बना हूं तब से तू आजाद है, तो इसके अंदर तो मालिक होने का जिक्र है, और हकीकी माना में वो हालत बयान हो रही है जिसमें इंसान मालिक हो ही नहीं सकता, पैदाइश से पहले कोई किसी का मालिक ही नहीं हो सकता। तो हकीकी माना अदम मिल्कियत का तकाजा कर रहा है, और मजाजी माना मिल्कियत का तकाजा कर रहा है कि मालिक जब से मालिक हूं तो उस वक्त से तुम आजाद। तो मालूम हुआ मालिक होना जरूरी है। भाई तवज्जो है, तो लिहाजा दोनों मानी यानी हकीकी माना और मजाजी माना में यहां कोई मुनासिबत मौजूद नहीं, बल्कि दोनों मानी में मुनाफात है। हकीकी माना तकाजा कर रहा है आदम मिल्कियत का कि वो मालिक हो ही नहीं सकता, जब मालिक नहीं तो आजादी कहां से, और मजाजी माना क्या तकाजा कर रहा है मिल्कियत का कि जब से मैं मालिक बना हूं तुम आजाद हो, तो यहां मिल्कियत जरूरी है। तो हकीकी माना तकाजा कर रहा है आदम मिल्कियत का और मजाजी माना तकाजा कर रहा है मिल्कियत का, तो दोनों में कोई मुनासिबत ही नहीं है, बल्कि दोनों मानी में मुनाफात है। लिहाजा यहां पर जब दोनों के अंदर मुनाफात है, कोई मुनासिबत मौजूद नहीं है, तो मजाजी माना भी मुराद नहीं लिया जा सकता। तो कहते हैं बिखिलाफी मस्तुशहीद बिही, बखिलाफ उस कौल के जिसे दलील बनाया गया, जिससे इस्तेदलाल किया गया, ले अन्नहु लावज हलहु फिल मजाजी, इसलिए क्योंकि उसकी मजाज में कोई वजह नहीं है, वहां मजाजी माना लेने की कोई वजह नहीं, क्योंकि हकीकी और मजाजी माना में मुनासिबत होनी चाहिए और वहां वो मुनासिबत नहीं है भाई। फतायन अल इल्गाउ, तो लिहाजा इसको बातिल करार देना ही मुतायन हो गया। आतकतु का कबल अन उखलका या कबल अन तुखलका, इसको बातिल करार देना ही मुतायन हो गया, क्योंकि हकीकी माना भी मुमकिन नहीं और मजाजी माना भी हम मुराद नहीं ले सकते, तो अब इसको बातिल करार देना ही मुतायन हुआ। बात समझ में आ गई। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।